तो आप पूछना चाहते हैं कि नेह कर्म कैसे कर सकते हैं,
कैसा होगा,
कैसा होता है। देखो वास्तव में जो नेह कर्म स्थिति है, जब मनुष्य के अंदर वासना खत्म हो जाती है उस स्थिति में ही नेह कर्म करना संभव है। और वासना खत्म कब होती है, जब ये जीव उस चेतन सत्ता या आत्म सत्ता या ब्रह्म कहें उसको, जब ये जीव उसमें लीन हो जाता है, उस स्थिति का नाम ही है वासना रहित हालत। इसका मतलब हुआ कि केवल सतपुरुष ही नेह कर्म कर सकता है, निष्काम कर्म कर सकता है। जीव निष्काम कर्म नहीं कर सकता, निष्काम कर्म करने की प्रैक्टिस कर सकता है। इसीलिए वो जो नेह कर्म स्थिति है वो ब्रह्म स्थिति है, अद्वैत स्थिति है या मोक्ष की हालत है। इसीलिए जो सत्पुरुष होते हैं, जैसे महर्षि रमण हैं, महात्मा भगत राम जी हैं, संत कबीर हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, इस स्थिति के मालिक ही निष्काम कर्म कर सकते हैं। इसीलिए इनके कर्मों को लीला कहा जाता है। जहां वासना नहीं है, वासना से वशीभूत होकर जो कर्म नहीं किया जा रहा है, फिर भी कर्म हो रहे हैं देह से, इसलिए इसको लीला कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्म की जो शक्ति है, जिसको हम ईश्वर कह देते हैं, प्रभु कह देते हैं, काली कह देते हैं, मां कह देते हैं, बहुत से नाम उसको देते हैं, कुंडलिनी कह देते हैं, सब उसी के नाम है। तो उसकी शक्ति से सारे सारा ब्रह्मांड चल रहा है, आपको चलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां कर्तापन नहीं है। वहां तो प्रकृति के सारे कर्म जो है वो नेह कर्म है, निष्काम कर्म है। मैं जब कर्म करता हूं, कितना भी सोच समझ के कर्म करूं, मेरी पीछे से वासना, मेरा स्वभाव, मेरी आदतें, उनका असर मेरे कर्म पर जरूर आ जाएगा। जब मेरे स्वभाव का, मेरी वासना का कर्म पर असर आएगा तो उस कर्म का फल भी होगा। इसलिए मुझसे कहा जाता है कि तू सोच समझकर कर्म कर और शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार कर्म करने की कोशिश कर। हम कोशिश ही कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारा खान पान है, तमोगुणी खान पान भी हमारा हो सकता है, बासी खाना खाएं, मीट खाएं, शराब पिए, बहुत जो है सड़े गले पदार्थ खाएं, सड़ाकर उनको, बड़ा तामसी भोजन लोग करते हैं, पाप की कमाई से खाएं वो भी तामसी भोजन है, रजोगुणी आहार भी जानते ही हैं कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन, बड़े जो है तरह तरह के स्वाद भोगने के लिए आहार ग्रहण करें, ये सारा जो है रजोगुण है। सतोगुणी जो आहार है वो सात्विक आहार जानते ही हैं आप, इसको नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट कहते हैं, दूध दही वगैरह है और सब्जी रोटी वगैरह है, ये नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट है। इसको भी शुद्ध कमाई का खरीदा हुआ हो, सीमित मात्रा में वक्त पर शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाया गया हो, तभी वो सात्विक भोजन कहलाएगा। इसीलिए शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने, चाहे वो भोजन की बात है, चाहे वो सोने की बात है, चाहे वो कपड़े पहनने की बात है, या किसी के साथ व्यवहार की बात है, या पैसा कमाई की बात है, मेरी जो दैनिक दिनचर्या है वो सतोगुणी भी हो सकती है, रजोगुणी भी हो सकती है और तमोगुणी भी हो सकती है। इसीलिए सत्पुरुषों की बातों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो कुछ भी वो कहते हैं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से मेरा सतोगुण नष्ट ना हो, और नष्ट हो तो क्या हो, तमोगुण और रजोगुण नष्ट हो और सतोगुण का निर्माण हो। क्योंकि सतोगुण ऐसी स्थिति है जिससे कोशिश करके आदमी निर्गुण हो सकता है। तो जो ईश्वर का सिमरन है ये सतोगुणी क्रिया है, अर्थात ये आपको सत से जोड़ने की जो है तरकीब है। ईश्वर से आप जुड़ते हैं सिमरन के द्वारा, लेकिन सिमरन में सफलता के लिए आपको चाहिए क्या, वासना रहित हालत चाहिए। सिमरन में पूर्ण सफलता के लिए वासना रहित हालत चाहिए। तो वासना रहित तो आप अपनी कोशिश से तो हो नहीं सकते, वासना रहित तो आपको ईश्वर ही करेगा। तो इसीलिए आपने शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, जिसके लिए महाराज जी ने जो पांच नियम दिए उसमें सेवा एक सूत्र दिया या नहीं दिया। तो सेवा क्या है, वो निष्काम कर्म ही तो है, लेकिन सेवा करके हमारे अंदर क्या क्या फीलिंग्स आती है हमको पता है। हम सेवा करते हैं लेकिन सेवा करते समय कितनी गलतियां होती हैं हमसे, हमको होश ही नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि जो आदमी शुद्ध हो गया, सेवा करने लग गया, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, कहीं ना कहीं अकड़ आ जाती है उसके अंदर, उसकी बोली से ही पता लग जाता है पहले जैसा था अब वैसा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं अहंकार उसमें टपकता है। ये स्वाभाविक बात है, यदि शास्त्रों का गहरा चिंतन वो नहीं कर रहा है, सत्पुरुषों की बातों का गहरा मनन नहीं कर रहा है, इसका शिकार होना ही होना है। क्योंकि मैं कर्तापन में खड़ा हुआ हूं और देह का अहंकार मुझे है साथ में, मैं देह हूं, ये मोह मुझको बना हुआ है, ये अज्ञान मेरा बना हुआ है। तो इस अज्ञान के रहते आपकी सेवा में दोष आएगा ही आएगा, बच नहीं सकते। जितना आपका चिंतन बारीक होगा उतना ही आप बच जाओगे। इसीलिए हर हालत में शास्त्रों का स्वाध्याय, गहरा मनन और गुरु के मार्गदर्शन पर ध्यान हमारा होना ही चाहिए, नहीं तो गलतियां होंगी हमसे। गलतियां करते हुए भी अहंकार ये करूंगा मैं गलती नहीं करता। मैं बहुत बड़ा सेवक हूं, बहुत बड़ा साधक हूं, समझ नहीं, आपके अंदर अहंकार आएगा ही आएगा, आप उससे बच नहीं सकते। इसीलिए निष्काम मैंने होना है, कामना रहित या यूं कहें कि वासना रहित मैंने होना है। वासना रहित हालत को ही मोक्ष कहते हैं। इसीलिए ये मार्ग है निष्काम कर्म करने का या निष्कामी होने का। मैं कर नहीं सकता निष्काम कर्म, निष्काम कर्म तो इस देह से तभी होंगे जब मैं जो करने वाला हूं ये खत्म हो जाएगा, या यूं कहें कि अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा। तो इस देह से निष्काम कर्म तो केवल ईश्वर ही कर सकता है, और शत्रु की जो स्थिति है वो वही है, इसलिए वो ईश्वर है। उसके जितने भी कर्म होते हैं, मनुष्य कर्म कर रहा है ये ऐसा करके नहीं देखते। कृष्ण जो कर्म कर रहे हैं, राम जो कर्म कर रहे हैं, कोई मनुष्य कर्म कर रहा है ऐसा नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि अवतार कर्म कर रहा है, और अवतार जब कर्म करता है तो उसके ऊपर उस कर्म का इफेक्ट नहीं होता, यही वो निष्काम कर्म। इसीलिए सारे शास्त्र हमको निष्कामी बनने की प्रेरणा करते हैं, लेकिन उसका एक लंबा चौड़ा मार्ग है जिसको महाराज जी ने पांच नियम के अंदर गत समराइज कर दिया, संक्षेप में उसका वर्णन कर दिया। तो ये पूरी जीवन पद्धति है, ये नहीं है मैंने सादगी धारण कर ली या सेवा कर ली काम हो जाएगा, ये पूरा पांच का पांच आपको एक साथ अपनाने पड़ेंगे, ये वे ऑफ लाइफ है, ये सात्विक जीवन जीने की कला है। इसीलिए हर बात का बार बार बारीकी से विश्लेषण किया जाता है, बार बार इन चीजों को पढ़ा जाता है कि जैसा लिखा है कि उसके अनुसार मैं क्या कर पा रहा हूं, आज से पांच साल पहले मेरी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। मैं तो ये तोलता ना, पहले मैं 500 रुपए महीना दान करता था, अब मैं 5000 दान कर रहा हूं, ये मापदंड नहीं है, ये मापदंड नहीं। इस सृष्टि में क्वांटिटी काउंट नहीं करती है, पीछे भावना क्या है वो काउंट करती है। भाव क्या है आपका? ठीक है, महाराज जी ने सूत्र दिया है 10% दान का, तो इसलिए दिया है कि आपकी आदत डालने के लिए। धीरे धीरे दान करोगे तो पैसे के प्रति जो मोह है आपका कमजोर पड़ेगा। लेकिन साथ में वो दूसरी बात भी कर रहे हैं, खाली दान की बात नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से कमाई की भी बात कर रहे हैं, और कमाई भी आवश्यकता पूर्ति के लिए, शौक पूरे करने के लिए नहीं। तो जो आदमी आवश्यकता पूर्ति के लिए कमाई करेगा, ईमानदारी से कमाई करेगा और लिमिटेड टाइम में कमाई करेगा, ये भी नहीं कि आज जितना मन चाहे कमाते रहें। मान लिया आपने 8 घंटे रखे हैं कमाई के लिए, तो 8 घंटे से 8.5 घंटे नहीं कमाई करनी आपने, आपने 8 घंटे ही कमाई करनी। जिसने निष्कामी होने के मार्ग पर चलना है, ये सारे रास्ते उसके लिए हैं। तो उसमें जो मिलेगा उसमें से तू 10% दान करेगा, तो फिर कैसे तू किसी से कंपटीशन कर सकता है कि मैंने इतना दान किया, मैंने उतना दान किया। हो सकता है तेरी कमाई केवल 5000 रुपये महीने की हो और दूसरी की कमाई 5 करोड़ रुपए महीने की हो, तो 5000 का 10% कितना हुआ? 500 रुपए। तो तेरे 500 रुपए उस 5 लाख से ज्यादा अच्छे हैं। तो तेरे 500 रुपए की कीमत उस 5 लाख से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो जो तेरा दान है तेरी वासना को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे ईश्वर से तुझको जोड़ रहा है, पैसे से निरासक्त कर रहा है, अर्थात लोभ तेरा कम हो रहा है। इसीलिए ईश्वर की दृष्टि में क्वांटिटी वहां काउंट नहीं करती, तेरी प्योरिटी, तेरा भाव काम करता है, किस भाव से, किस प्योरिटी से तू उस काम को कर रहा है। तो चाहे आपका साधा सा कर्म क्यों ना हो, मान लिया कोई पोछा लगाने का ही काम करता है या केवल सफाई करने का काम करता है, तो सफाई तो जितने सफाई मजदूर हैं सारे सफाई करते हैं, लेकिन सफाई करते करते उनकी वासना और गहरी हो जाती है। तो सफाई कर्म तो कोई मतलब ही नहीं रखता, पीछे भाव क्या है तेरा? बस तेरी भावना काम करती है, भावना ही तुझको इस मन से ऊपर ले जाती है। पहले मन का शोधन करती है, मन जब तेरा सतोगुणी भाव से युक्त हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, तब तेरे अंदर ईश्वर का रंग लगने लगता है। जब उसका रंग लगता है तो संसार फिर तुझको धीरे धीरे करके मन से हट ही जाता है तेरा। तो ये एक स्थिति है निष्काम कर्म की, जिस स्थिति में पहुंचकर हम ये निष्काम कर्म कर सकते हैं। जो निष्काम कर्मी है वो कर्म की प्लानिंग नहीं करता, स्वतः ही उससे कर्म होते हैं, ईश्वर के हुक्म से स्वतः ही सारे कर्म होते हैं। या यूं कहिए, जैसा उसका प्रारब्ध है उसके अनुसार से कर्म होते हैं। ना उसका कोई फल से वास्ता होता है, ना उसका कोई करनी से वास्ता होता है। हमारा तो फल से वास्ता होता है, हम सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद हमारा फल सामने नहीं रहता, फल में बेचैनी होती है। अरे भाई, मैंने सेवा की, सारी केयर भी करी, सारा ध्यान रखा, लेकिन फल जो है वो मनचाहा नहीं मिला। इसलिए संगत के कर्म करने में बेचैनी होती है, नहीं होती है? स्वाभाविक है, वो होगी। इसीलिए जो महाजी कहते, प्रेमी विवेक और वैराग्य, ये दो चीजें मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। और विवेक और वैराग्य, जैसे जैसे आप वासना से मुक्त होगे, वासना से मुक्त होने का आपके वास्ते मतलब ये है कि तमोगुणी और रजोगुणी वासना से मुक्त होगे, वासना तो रहेगी लेकिन सतोगुणी वासना रहेगी आपकी। जैसे जैसे आप तमोगुणी रजोगुणी वासना से मुक्त होगे, वैसे ही वैसे आपके अंदर ये विवेक और वैराग्य ये आपके अंदर मन में स्थिर हो जाएगा, इसका प्रभाव आपके मन पर बढ़ने लगेगा। और जितना विवेक और वैराग्य बढ़ेगा उतना ही आपका सिमरन परिपक्व होगा, सिमरन में मन लगेगा और सिमरन में रस आएगा आपको, और ईश्वर के साथ आपका संबंध अंदर बनेगा। इसीलिए चाहे आप पूरा जन्म लगा दो ऐसी बातें कर करके, समझ नहीं, चाहे आप गंभीरता से जो है गुरु की बात समझो, शास्त्र के मर्म को समझो और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करो, व्यवहार करो, ये तो आप पर निर्भर करता है। कोई बैठा बैठा आपको कब तक सिखाता रहेगा, सीखना तो आपने। इसीलिए जो शास्त्र का स्वाध्याय है ये रेगुलर चीज है, बिल्कुल ये दैनिक प्रोग्राम में होनी चाहिए। और खाली पढ़ लिया मैंने, एक घंटा पूरा कर लिया, एक घंटा मैंने रोज पढ़ लेता हूं, ना ना ना, ये नियम पूरे करने वाली चीज नहीं है, ये बुद्धि को घिसने वाली चीज है। यदि आप ठीक तरह से पढ़ते हो, ठीक तरह से चिंतन मनन करते हो तो आपकी बुद्धि की गहराई बढ़ती चली जाएगी। एक ही समता विलास पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे, बातें तो वही होंगी लेकिन आप खुद देखोगे कि गहराई इसकी बढ़ती ही चली जाएगी। वही सादगी की बात होगी, वही सेवा की बात होगी, वही समता विलास में पढ़ोगे देखोगे कि चीजों के अर्थ ही बदल गए। अर्थ क्या बदल गए, पहले जो मैं भावना से ग्रहण करता था वो भावना ही बदल गई। इसीलिए जैसे जैसे आप के संस्कार सतोगुणी बनेंगे, वैसे ही वैसे तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आपके अंदर निष्कामता भी बढ़ेगी, निष्काम हो नहीं जाओगे, निष्कामता बढ़ेगी। पहले जो कर्म करने में बड़ी बेचैनी होती थी, कर्म फल के लिए बड़ी बेचैनी होती थी कि ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो सिमरन ही नहीं हो पाता था क्योंकि मन में बेचैनी रहती थी ना, तो फिर देखोगे कि आप वो स्थिति नहीं रहे, काम बने या बिगड़े, ज्यादा ना खुशी होती है आपको ना ज्यादा बेचैनी होती है करने में भी और उसके परिणाम की प्राप्ति में भी, अर्थात फल में भी। तो धीरे धीरे आपके अंदर जो है वो जो बेचैनी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, उसी से पता लगता है कि मैं धीरे धीरे निष्कामता की ओर बढ़ रहा हूं। लेकिन निष्काम हो नहीं सकते, निष्कामता को प्रभु ही करेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर मैं का भाव है, कर्तापन का भाव है कि मैं करता हूं, और ये भाव आप अपनी कोशिश से नहीं खत्म कर सकते, ये भाव ईश्वर कृपा से ही खत्म होता है, इसको ईश्वर ही खत्म करता है। इसलिए आपको सिखाया जाता है कि शुरू से ही गुरु प्रायणता धारण करो, गुरु और ब्रह्म कोई अलग चीज नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो निराकार सत्ता है और अकर्म सत्ता है, ब्रह्म तो कर्म करता ही कोई नहीं क्योंकि वहां सृष्टि ही नहीं है, किसके लिए कर्म करेगा। तो गुरु की स्थिति भी वही है, लेकिन मैंने जिस गुरु की बात पढ़ी है, जिस गुरु को देखा है या जिस गुरु के बारे में मैं सोचता हूं, वो तो गुरु करने वाला था, महाजी थे तो कितना कर्म किया उन्होंने, इतनी बड़ी संगत का निर्माण किया, इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण किया, संता विलास का निर्माण किया, प्रेमियों का क्यों कितने लेटर लिखे, कितना मार्गदर्शन किया, आश्रम उनकी प्रेरणा से खड़े हुए, कितना कर्म हुआ गुरु का, तो हमारे सामने जो ब्रह्म है वो गुरु रूप में है, कर्ता रूप में है। जो करके दिखा रहा है, जो वचन बोलकर शास के द्वारा समझा रहा है, तो गुरु की करनी है हमारे। तो हमारा संबंध जो है वो करने वाले से ही बन पाता है। इसीलिए गुरु परायणता ये पहली चीज है। गुरु से वो प्रार्थना भी कर लेता है, क्योंकि गुरु के नाम रूप को भी वो जानता है। यद्यपि गुरु नाम रूप है नहीं, वो ब्रह्म रूप है, अर्थात वो निराकार सत्ता है, जिसको महाजी कह भी रहे हैं गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। संतरवास में है ना ये लिखा हुआ, गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। मैं भी शरीर नहीं हूं, गुरु भी शरीर नहीं है, मैं जीव हूं और गुरु ब्रह्म है। इसीलिए जैसे जैसे आप पांच नियम पर चलते हो, इसके अनुसार आप जीवन जीने की कोशिश करते हो, वैसे वैसे आप का जो तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव है ये सतोगुण में धीरे धीरे बदलने लगता है। और बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है। एक ऐप छोड़ने में मुझे 10 साल लग गए, 4 साल बीते नहीं पुनः वो ऐप शुरू कर दिया मैंने। तो वासना तो आपके अंदर है ही ऑलरेडी, पांच विकार आपके अंदर हैं, उनका बीज मौजूद है, जहां खाद पानी मिला वो विकार का फिर उग जाएगा। जब तक मैं है आपके अंदर, मैं भाव है, इसको मूल अहम कहते हैं, या यूं कहें कर्तापन जब तक आपके अंदर है, तब तक पांच विकार के बीज तो आपके अंदर मौजूद है। जैसे ही आपकी सावधानी कम हुई, वो उसका अंकुर फिर फूट जाएगा। जो दसियों साल मेहनत करके आपने इसका गुण का अर्जित किया आपने, वो फिर दोष का अंकुर फूट जाएगा आपके। इसीलिए इसको तलवार की धार कहा जाता है। ये सतमार्ग पर चलना तलवार की धार की तरह से है। इस कारण से जहां आप जो है वो लापरवाह हुए, दोष आपके भी बढ़ जाएंगे, इमीडिएटली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो मेहनत की है वो बेकार नहीं जाती आपकी। यदि दोबारा होश आ जाए आपको, तो बड़ी जल्दी उस पर काबू पा लोगे आप, बहुत जल्दी काबू पा लोगे। पहले काबू पाने में 10 साल लगे, तो अब तो हो सकता है 10 दिन में आप काबू पा लो। लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। इसीलिए या तो आपकी निरंतर प्रगति होती है, या आपकी निरंतर अवनति होती है। ये जीव किसी एक स्थिति में टिक नहीं सकता। ये टिक सकता है तो वही आत्मलीनताई की स्थिति है, वहां टिक जाता है ये, जहां से इसका पतन संभव है। इसलिए देखा होगा कि बड़े बड़े जो समाधि वाले भी लोग हैं, जिनको समाधि लग गई है, बड़ी सिद्धियां आ जाती है उसके अंदर। यदि उसके अंदर यदि कोई भी भाव आ गया कि सिद्धि के द्वारा किसी का कल्याण कर दूं, वो स्थिति से गिर जाता है। समाधि वाला भी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए महाजन ने कहा कि आत्म स्थित होने पर भी बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है, बड़ा ही जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि मूल चीज वही है कर्तापन, मैं कुछ कर सकता हूं। तो सिद्धि का उपयोग करा तो कुछ कर रहा है ना। तो इसीलिए जो जागरूक साधक हैं वो ईश्वर को ही कर्ता हर हालत में देखते हैं, वही करने वाला है। खुद जो है वो उसके हुक्म में चलता हुआ जानते हैं। मेरे अंदर सिद्धि भी है, मेरी बिना इच्छा के मेरी सिद्धि के द्वारा किसी का भला हो गया, मेरी इच्छा कोई भी नहीं, तो वो उसको ईश्वर की करनी मानते हैं। तो प्रभु ने करना था इस देह से करवा ली। तो हर व्यक्ति में कोई गुण होता है, यदि वो ईश्वर प्राण जीवन उसका है, गुरु प्राण उसका जीवन है, तो उसके द्वारा जो अच्छे कर्म होते हैं, फिर वो अंदर से जागरूक रहता है कि ये प्रभु की लीला है, प्रभु ने इस देह का उपयोग किसी के कल्याण के लिए कर लिया, मेरी करनी इसमें कोई भी नहीं। तो अंदर से वो इतना जागरूक रहता है तभी वो इस अहंकार से बच सकता है, नहीं तो शिकार हो जाएगा इसका फल। जहां आपने भाव आया कि मैंने किया, ईश्वर की करनी आपको नजर नहीं आ रही है, वही शिकार हो गया। अब करनी की कर ली आपने तो इसका आपकी करनी का फल निश्चित हो गया, जब फल निश्चित हो गया तो आपका जन्म भी निश्चित हो गया, क्योंकि भोगोगे भी तो आप इसको। अच्छे कर्म का जो फल सुख है उसको भोगने के लिए पैदा नहीं हो गए क्या? तो जन्म होगा फिर मृत्यु भी होगी, जवानी होगी फिर बुढ़ापा भी होगा, तो वही सुख दुख का चक्र आपसे बंधा रहता है, आप उससे मुक्त नहीं हो पाते। तो लक्ष्य तो है निष्काम कर्मी होने का, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं तो निष्काम कर्म कर रहा हूं। आप सेवा करते हो, सेवा तो जरूर है, वो तो तमोगुणी रजोगुणी कर्म के मुकाबले में सतोगुणी कर्म है, लेकिन बंधन में आपको सेवा भी डाल रही है। तो आपके अंदर होश होना चाहिए, मैं अपने स्वार्थ को तोड़ने के लिए, स्वार्थ भाव से ऊपर उठने के लिए सेवा कर रहा हूं। मेरी सेवा के द्वारा किसी का भी यदि लाभ हो रहा है वो तो प्रभु करवा रहे हैं। मैंने किसी का रोग दूर करने के लिए उसके पैसे से मदद कर दी या शरीर से मदद कर दी, मान लिया उसको वो रोग मुक्त हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया उसके भाग में रोग मुक्त होना नहीं था, मेरी करने से उसको वो रोग मुक्त हो गया। तो आप सोचो जरा, ईश्वर के मुकाबले में तू करता खड़ा हो गया नहीं हो गया? वाणी तो कह रही है सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, क्योंकि वो है सारे जगत का कर्ता ईश्वर ही है, ये बात सत्य है, ये तूने जानना है, मानना नहीं है। सारे जगत का कर्ता ईश्वर है, उसके हुक्म में सारा जगत चल रहा है, जगत में मनुष्य भी आ गए, जानवर भी आ गए, कीट मकोड़े भी आ गए, प्रकृति भी सारी आ गई, इसका कर्ता तो ईश्वर है। अब एक नया कर्ता तू पैदा हो गया, तूने किसी को रोग मुक्त कर दिया, तो अपनी अज्ञानता तो समझ में नहीं आ रही है, क्या क्या गलती कर रहा हूं। तो ये ज्ञान, ये जो सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है, ये बुद्धि में हर समय बना रहना चाहिए, तभी आप इस कर्तापन से थोड़ा बच पाओगे। सेवा आपके शरीर के द्वारा ही होगी, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो, इसलिए कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं। कर्म तो आपको शरीर से हो रहा है ना, और शरीर जीव है नहीं, जीव शरीर के बंधन में है और देह आपके शरीर से ही हो रहा है, क्योंकि आप अज्ञानी हो, अपने आप को शरीर करके देख रहे हो, इसलिए आप समझ रहे हो कि मैंने कर दिया। कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, कितना विवेक से चलने की जरूरत है, विचार करके देखो, बिना विवेक के चल पाओगे आप? हर पल गलतियां करोगे आप। इतना कीमती वक्त मनुष्य जन्म का अपनी ही अज्ञानता से, अपनी ही बेवकूफी से आप बिगाड़ लेते हो। देखा नहीं है सत्संगियों में बड़े अहंकारी भी मिल जाते हैं आपको, उन्हें यही अहंकार होता है मैं बड़ा अच्छा सत्संग करता हूं, किसी को यह अहंकार होता है मैं सत्संग बड़े ध्यान से सुनता हूं, किसी को यह अहंकार होता है मैंने बहुत सारे सत्संगी तैयार कर दिए। जो सत्संग उसके अंदर विवेक जागृत करना चाहिए, वो सत्संग उसके अंदर अहंकार जागृत कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मनन नहीं कर रहा है, शास्त्र के वचनों पर गहराई से चिंतन नहीं करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कान से सुन रहा है मुंह से कह रहा है, उसके मर्म को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए उसने धोखा खाना ही खाना है। सत्संगी बनके भी वो बिगड़ा हुआ सत्संगी बन जाएगा। जिस सत्संग ने उसके अंदर विवेक पैदा करना था वो सत्संग उसके अंदर अहंकार पैदा करने वाला बन जाएगा। ये सतमार्ग बड़ा ही बारीक मार्ग है, बारीक इसलिए है क्योंकि इसमें निरंतर चिंतन चाहिए, निरंतर सुधार चाहिए, आप कितने भी आगे क्यों ना बढ़ गए हो, आपको यह अहंकार होना ही नहीं चाहिए कि मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि पतन का रास्ता आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। 2 मिनट नहीं लगते। इसीलिए निष्काम कर्म क्या है वास्तव में देखा है तो निर्वास होने की प्रक्रिया है। निष्काम कर्म करने की प्रक्रिया या निर्वास होने की प्रक्रिया एक ही बात है। जितनी जितनी आपके अंदर जो है वो वासना कमजोर पड़ती जाएगी, आपके कर्म में निष्कामता बढ़ती चली जाएगी, कर्म करने में बेचैनी कम होती चली जाएगी, कर्म फल के प्रति आसक्ति कम होती चली जाएगी। ये अंतर आएगा आपके अंदर। घर वालों के प्रति मोह, अपनी देह के प्रति मोह, देश के प्रति मोह, समाज के प्रति मोह, ये सारे मोह आपके कमजोर पड़ते चले जाएंगे। इसीलिए निष्काम कर्म की परिभाषा कोई विशेष काम की नहीं है हमारे लिए। तो निष्काम कर्म का मतलब होता है कामना रहित कर्म, और कामना रहित कर्म केवल ईश्वर ही कर सकता है। वो कामना रहित है, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। या जो मनुष्य ईश्वर के साथ मिलकर एक हो जाए, देह उसकी मनुष्य की नजर आ रही है लेकिन वह जीव सत्ता ईश्वर सत्ता में विलीन हो चुकी है, तो हम उसकी देह को देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये कर्म कर रहा है। इसलिए महर्षि रमण कहते थे कि सत्पुरुष को कर्म करता हुआ देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये भी हमारी तरह कर्म कर रहा है, जबकि उसकी स्थिति से देखो तो वो कर्म कर ही नहीं रहा है। कर्म करते हुए भी वो अकर्ता है, कर्म करते हुए भी वो अकर्ता है। महर्षि रमण के ऑपरेशन हो रहे हैं, 3 कैंसर के ऑपरेशन हो गए उनके। वो कहते हैं एनेस्थीसिया मत दो मुझे, ऑपरेशन कर दो ऐसे। तो देह से संबंध है ही नहीं महर्षि रमण का। महर्षि रमण का देह से कोई संबंध ही नहीं। जो देह और जीव को जोड़ता है बीच में तो मन है ना, मन की सत्ता ही वहां विलीन है चेतन सत्ता में। तो जिस प्रकार दर्द का असर महर्षि रमण पर नहीं हो रहा है, उसी प्रकार कर्म का असर भी महर्षि रमण पर नहीं हो रहा है। देह में ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं। ऑपरेशन होगा तो देह में तड़पन तो होगी नहीं होगी, असर तो होगा उसका नर्वस सिस्टम पे। देह से कर्म होंगे उसका भी असर तो होगा देह पर, क्योंकि महर्षि रमण पर कोई असर नहीं उसका। ये सत्पुरुषों की स्थिति होती है निष्काम कर्म की। उस स्थिति को मैंने भी एक दिन प्राप्त करना है, मेरा वो लक्ष्य है। तो कितने सत्पुरुषों ने कष्ट सहे हैं, कैसा उनका निर्लेप जीवन रहा है, महाजी का जीवन देख लो कितना निर्लेप रहा है, किसी चीज से कोई संबंध नहीं उनका। सबके बीच में रहते हुए भी किसी से कोई संबंध, प्रेमियों से भी बड़ा प्रेम प्रकट करते थे लेकिन संबंध उनका कोई नहीं था किसी से। एक बार हुआ था, प्रेमी जो को वहम हो गया कि महा जी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, समझे नहीं। तो जब वो प्रेमी का भाव देखा महाराज जी ने कि इसके अंदर तो ये वहम हो गया नहीं कि शायद गुरु का काम मेरे बिना नहीं चलेगा, तो महाराज जी ने साफ कह दिया उसके मार्गदर्शन के लिए, प्रेमी अंदर से ये किसी के नहीं है, अंदर से ये किसी के नहीं है। ये स्थिति होती है सत्पुरुषों की, ये है निष्काम स्थिति। इसके लिए तो पूरा जन्म लगता है नहीं, तब भी आप निष्काम हो पाओगे नहीं हो पाओगे कुछ कहा नहीं जा सकता। महाजी ने तो खुद ही कहा था प्रेमी पिछले ये 3 जन्म की कमाई है, ये उनका अंतिम जन्म था। लेकिन हर जन्म में वो आगे बढ़ते रहे। निष्काम कर्म की स्थिति मान लिया 100% वाली है, तो एक जन्म में 25% उन्होंने कमाई कर ली। जन्म तो क्योंकि लाइफ तो जीव की कंटिन्यूस है, देह का परिवर्तन है, देह का परिवर्तन तो अभी भी हो रहा है हमारा। बचपन में कितने छोटे थे, आज कितने शरीर कैसा हो गया हमारा, देह तो बदल चुकी हमारी। अहंकार कायम है हमारा लेकिन देह तो बदल चुकी हमारी, तो देह तो लगातार परिवर्तित हो रही है आपकी, जीव वही। इसीलिए पूरी लगन से पूरी कोशिश से एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए निष्काम होने की, निर्विकार होने की प्रतिदिन। तो हर दिन की जो क्रिया होती है या आपका या पतन कर रही है या उत्थान कर रही है, हर दिन की क्रिया, यदि एक दिन की भी क्रिया बिना विवेक के नहीं हमको करनी चाहिए, उस शास्त्रों के मार्गदर्श के अनुसार उस क्रिया को करने की कोशिश करना चाहिए। आज का दिन हमने उसके अनुसार व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज यदि मैं आगे नहीं बढ़ा तो मैं एक स्टेप पीछे चला गया, ये ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। इसलिए बस यही है कि गुरु ने जैसा मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार निरंतर होश में रहें, होश में चलने की कोशिश करें। एक दिन जरूर हमारे जीवन में आएगा जब मैं एक दिन निष्काम कर्मी हो जाऊंगा, नेकर्म स्थिति को प्राप्त कर लूंगा। ओम ब्रह्म सत्य।